माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज जे गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय कुशल नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Thank you. गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
सब लोग प्रणाम करें।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री 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 प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांगा।
बात नहीं किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? आपके साथ जो बच्चे हैं वो शोर नहीं करेंगे, आपकी बहुत जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को शांत करिए या बच्चों को बाहर ले जाइए। आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा। और आगे आइए, जो दूर बैठे हैं वो आगे आइए। बातें नहीं आपस में, ये जगह बातें करने की नहीं है बिल्कुल। जिन्हें बातें करना है वो बाहर जा सकते हैं, कोई बात नहीं करेगा। आपसे बोल रहा हूँ, या तो सुनिए या फिर बाहर जाइए। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे शोर नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं यहाँ पर। और ये पंखे जो हैं, ये सामने के सब पंखे बंद कर दीजिए, सब पंखे बंद कर दीजिए। आज बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज क्या है? आज क्या विशेष दिन है कौन बताएगा? आज बहुत ही पवित्र दिन है, कौन बताएगा क्या है? कौन बताएगा? किसको पता है आज क्या है विशेष दिन? किसको पता है? किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता? किसको पता? किसको पता है? किसको पता है? हमारे वैष्णव कैलेंडर में क्या है आज विशेष त्यौहार? हमारे वैष्णव कैलेंडर में वैष्णवों का त्यौहार है आज, विशेष त्यौहार है वैष्णवों का है। क्या है? लिखा तो है यहाँ पर, पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पा रहे हैं। कौन बताएगा आज क्या है विशेष त्यौहार? क्या है विशेष त्यौहार? क्या है आज? श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। आज हम उनके बारे में सुनेंगे, इसलिए बिल्कुल शांत रहें और आपस में कोई बातें ना करें, इशारा करिए सबको चुप रहने का। सुनिए बड़े ध्यान से। सबसे पहले समझिए श्रीमास पंडित। श्रीमास पंडित कौन है? श्रीमास पंडित श्री चैतन्य के पार्षद हैं। श्रीमास पंडित मेरे सिर के ऊपर जो पांच व्यक्तियों का चित्र बना हुआ है, पांच व्यक्तियों का चित्र बना हुआ है, सबसे बीच में श्री चैतन्य है। जो कैसे वस्त्र धारण किए हैं, कौन से रंग के वस्त्र धारण किए हैं श्री चैतन्य? कौन से रंग के वस्त्र धारण किए हैं श्री चैतन्य? केसरिया वस्त्र धारण किए हैं। और उनके साथ में नित्यानंद प्रभु हैं, कैसे वस्त्र धारण किए हैं? नीला वस्त्र। नित्यानंद प्रभु नीला वस्त्र धारण किए हैं। और अद्वैताचार्य जो सफेद दाढ़ी मूछे हैं, अद्वैताचार्य हैं। और गदाधर पंडित कैसा वस्त्र धारण किए हैं? गदाधर पंडित लाल वस्त्र धारण किए हैं। और श्रीमास पंडित जो मृदंग बजा रहे हैं, कैसा वस्त्र धारण किए हैं? सफेद। हाँ, तो श्रीमास पंडित, ये श्रीमास पंडित की भतीजी नारायणी, इनकी भतीजी थी नारायणी। क्या नाम था उसका? नारायणी। उसको श्री चैतन्य की कृपा प्राप्त हुई। बचपन में ही उसे श्री चैतन्य की कृपा प्राप्त हुई तो कृष्ण प्रेम में पागल हो गई। छोटी सी बच्ची कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है? कैसे? श्री चैतन्य की कृपा प्राप्त हुई। और आगे चलकर के उसी ने वृंदावन दास को जन्म दिया, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। तो उसको जन्म किसने दिया? नारायणी देवी ने जन्म दिया। और नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे, नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे कौन? वृंदावन दास, वृंदावन दास ठाकुर। और इन्होंने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनकर के व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इससे बड़ा और कोई लाभ जीवन का नहीं, मनुष्य के जीवन का इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। बात है नहीं, बात है नहीं, बैठ जाइए, सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांत। आपस में कोई बात नहीं, बिल्कुल शांत, सबको इशारा करिए चुप रहने का। वृंदावन दास ठाकुर व्यास देव के अवतार है। किसके अवतार हैं? व्यास देव के अवतार हैं। व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन किया। व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया। और वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य का चरित्र वर्णन किया। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं। उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। किसकी कृपा प्राप्त हुई? नित्यानंद प्रभु। नहीं सुनाई पड़ रहा? किसकी कृपा प्राप्त हुई? नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। किसको? वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, जिसके द्वारा उन्होंने क्या लिखा? चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य का जीवन चरित्र लिखा, है ना। कृष्णदास कविराज ने लिखा चैतन्य चरितामृत, बाद में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, और बाद में कृष्णदास कविराज ने लिखा चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर की प्रशंसा लिखी है। किसने लिखी है? कृष्णदास कविराज ने। किसने? कृष्णदास कविराज ने अपने चैतन्य चरितामृत में वृंदावन दास ठाकुर की प्रशंसा लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है कि चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। चैतन्य भागवत को सुनने से क्या होता है? सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य भागवत जिसको लिखा, किसने? चैतन्य भागवत को किसने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर ने। वृंदावन दास ठाकुर की तो प्रशंसा हो रही है। चैतन्य भागवत की प्रशंसा अगर होती है तो किसकी प्रशंसा हो रही है? वृंदावन दास ठाकुर की, क्योंकि उन्होंने लिखा है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने लिखा है, क्या लिखा है कि चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। चैतन्य भागवत के पठन द्वारा व्यक्ति श्री चैतन्य और नित्यानंद की महिमा को समझ पाएगा। किसकी महिमा समझ पाएगा? किसकी महिमा समझ पाएगा? चैतन्य और नित्यानंद की महिमा। किसको पढ़ करके? चैतन्य भागवत को पढ़ करके व्यक्ति चैतन्य और नित्यानंद की महिमा को समझ पाएगा और ज्ञान की परम सीमा प्राप्त करेगा शुद्ध कृष्ण प्रेम। ज्ञान की जो परम सीमा है वो क्या है? शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त करेगा। कैसे? शुद्ध कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करेगा? चैतन्य भागवत का पठन करके। चूंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखा जा सकता, ऐसा अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए श्री चैतन्य ने स्वयं वृंदावन दास ठाकुर के मुख से इसका लेखन करवाया है। श्री चैतन्य ने ही लिखवाया है, वृंदावन दास ठाकुर के हाथ से श्री चैतन्य ने लिखवाया है। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, ऐसा अनमोल ग्रंथ लिखकर उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र से संपूर्ण विश्व का उद्धार कर दिया है। जन्म मृत्यु के चक्र से संपूर्ण विश्व का उद्धार कर दिया है। किसने? वृंदावन दास ठाकुर ने। क्या लिख करके? चैतन्य भागवत लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग के अर्चक विग्रहों की स्थापना की थी। जैसे यहाँ पर निताई गौर के अर्चक विग्रह हैं हमारे दिल्ली मंदिर में, उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने मोदादुम द्वीप में निताई गौरांग के अर्चक विग्रहों की स्थापना की। मोदादुम द्वीप नवद्वीप के अंदर है वे। वहाँ हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिखाओ इधर, दिखाओ लाइट, दिखाओ इधर किताब में। हाँ सुनिए, और वृंदावन दास ठाकुर के अनेक शिष्य थे, जिनमें श्री केशव भारती के वंशज गोपीनाथ ब्रह्मचारी विशेष हैं। श्री कृष्ण लीला में वृंदावन दास ठाकुर शील व्यास देव हैं, इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में विराजमान है। सुनिए बड़े ध्यान से। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की है और अपना परिचय क्या दिया है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? बातें बिल्कुल नहीं, कोई बातें नहीं करेगा, सुनिए ध्यान से, वापस आपस में कोई बातें नहीं करेगा। वृंदावन दास ठाकुर ने अपना परिचय दिया है चैतन्य भागवत में, क्या लिखा है? सर्वश्रेष्ठ भृत्यतान वृंदावन दास। क्या? सर्वश्रेष्ठ भृत्य तान वृंदावन दास, कि वृंदावन दास नित्यानंद प्रभु के सबसे अंतिम सेवक है। नित्यानंद प्रभु के तो बहुत सेवक हुए, ये सबसे अंतिम सेवक कौन है? वृंदावन दास है। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, तो सर्वशेष का मतलब है सबसे अंतिम है, और सर्वशेष का मतलब ये भी होता है सबसे छोटा। ये बातें कौन कर रहा है? बातें नहीं, ये माता जी आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? ये कौन बैठ करके बातें कर रहा है? कोई खड़े होके बातें कर रहा है, कोई बैठ करके बातें कर रहा है? यहाँ बातें करने के लिए जगह नहीं है। जो खड़े हैं बातें नहीं करेंगे, जो बैठे हैं वो बातें नहीं करेंगे, ये बातें करने की जगह नहीं है। बातें करने के लिए बाहर जाइए, सबको इशारा करिए चुप रहने का। कौन बातें कर रहा है?
बच्चे हैं?
नहीं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं कोई बातें नहीं करेगा। किसके बच्चे बातें कर रहे हैं? ये बातें करने की जगह नहीं है, बाहर जाइए, बाहर जा सकते हैं, बाहर बहुत जगह है बातें करने की। कौन बातें कर रहे हैं यहाँ पर? सुनिए बड़े ध्यान से। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, वृंदावन दास अपने को कह रहे हैं कि मैं वृंदावन दास क्या हूँ? नित्यानंद प्रभु का सर्वशेष भृत्य हूँ। भृत्य का मतलब सेवक, भृत्य का मतलब सेवक, नित्यानंद प्रभु का सर्वशेष सेवक हूँ। और सर्वशेष के दो अर्थ हैं, सर्वशेष का अर्थ है सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, और सर्वशेष का दूसरा अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा। तो उन्होंने अपने को सबसे छोटा सेवक बताया है, सबसे तुच्छ सेवक बताया है कि मैं वृंदावन दास नित्यानंद प्रभु का सबसे तुच्छ सेवक हूँ। और अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, और फिर क्या, अपनी माता का नाम दिया है, नारायणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। गर्भजात का मतलब गर्भ से उत्पन्न हुआ, किसके गर्भ से? नारायणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। और नारायणी कौन है? अवशेष पात्र। श्री चैतन्य जब प्रसाद लेते थे, ग्रहण करते थे, तो जो अवशेष होता था वो नारायणी को देते थे। तो वो कितनी भाग्यशाली कन्या थी, 4 साल की बच्ची थी, और श्री चैतन्य जब भोजन करते थे तो जो बचता था उसको देते थे, तो वो क्या हो गई? अवशेष पात्र। पात्र का मतलब है बर्तन, जहाँ अवशेष यानी जूठा जिसमें डालते हैं उस बर्तन को क्या बोलते हैं? अवशेष पात्र। तो वो अवशेष पात्र कौन है? नारायणी है। श्री चैतन्य अपना जो कुछ भी जूठा छोड़ते थे उसमें डालते थे, उसके मुंह में डालते थे, तो वो खाती थी, तो वो नारायणी क्या है? अवशेष पात्र है। तो अवशेष पात्र नारायणी, बातें नहीं, ये बातें बहुत हो रही हैं। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? गार्ड कहाँ है? गार्ड कहाँ चले जाते हैं सब? इनको जो है इशारा करिए चुप रहने का, ये लोग बहुत शोर कर रहे हैं, ये आपस में बातें नहीं करेंगे। बच्चे हों बूढ़े हों कोई आपस में बातें नहीं करेंगे, सबको इशारा करिए चुप रहने का। अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, तो श्री चैतन्य की अवशेष पात्र नारायणी के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ, है ना? तो कितना बड़ा सौभाग्य है, वृंदावन दास ठाकुर ने अपना परिचय दिया है कि नित्यानंद प्रभु का मैं सर्वशेष सेवक हूँ, और किसका पुत्र हूँ? अवशेष पात्र नारायणी का पुत्र हूँ। तो माता जो है श्री चैतन्य की अवशेष पात्र हैं, और पुत्र जो है नित्यानंद प्रभु का सर्वशेष सेवक है। तो नित्यानंद प्रभु का सर्वशेष सेवक और चैतन्य महाप्रभु की सर्वशेष अवशेष पात्र नारायणी। तो माता और पुत्र जो है दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। जो पुत्र है नित्यानंद प्रभु का सर्वशेष सेवक है और माता श्री चैतन्य की अवशेष पात्र है ना। तो ये कहा है सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। कवि कर्णपूर गोस्वामी ने गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है वेद व्यासो ये वासीन दासो वृंदावनोधुना सखाया कुसुमा पीड़ा कार्य तस्तम समाविशन। श्री कृष्ण लीला में जो वेद व्यास थे वही नवद्वीप लीला में वृंदावन दास हुए। वेद व्यास जी ने वेदों के चार विभाजन किए, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा। वही वेद व्यास श्री कृष्ण लीला के वेद व्यास गौर लीला में क्या हुए वृंदावन दास। और उन्होंने क्या लिखा चैतन्य भागवत लिखा है। और वृंदावन में कुसुमा पीठ नाम का एक कृष्ण सखा था, वो भी इनमें प्रवेश किया। 2 in 1 वेद व्यास के अवतार हैं और कुसुमा पीठ नाम का जो कृष्ण का सखा है वो भी इनके शरीर में है। तो 2 व्यक्ति इनके शरीर में है। ये वृंदावन दास ठाकुर श्रीमास पंडित के कौन लगते हैं? अभी मैंने कुछ चर्चा की थी, श्रीमास पंडित की भतीजी नारायणी और उसके पुत्र वृंदावन दास, ठीक है। तो वृंदावन दास श्रीमास पंडित के कौन लगे, कौन बताएगा? श्रीमास पंडित की भतीजी नारायणी, नारायणी के पुत्र वृंदावन दास, तो वृंदावन दास के श्रीमास पंडित कौन लगे? नाना, नाना लगे, है ना। तो जो श्रीमास वृंदावन दास ठाकुर की जो नाना है, तो इनके पिता हैं जलधर पंडित, श्री जलधर पंडित, श्री जलधर पंडित। ये अपनी पत्नी के सहित नवद्वीप में आकर के बस गए। उनके 5 पुत्र हुए। ये सभी 5 पुत्र कैसे हैं? श्री नाम वाले हैं, श्री नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्री निधि। 5 पुत्र हुए। श्री जलधर, वो भी श्री है, पिताश्री, श्री जलधर पंडित, और उनके 5 पुत्र भी श्री हैं, श्री नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्री निधि, ठीक है। तो पिता भी श्री हैं और 5 पुत्र भी श्री हैं। पिता हैं श्री जलधर और 5 पुत्र श्री नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्री निधि। श्री नलिन की कन्या है नारायणी, जो सबसे बड़े थे श्री नलिन, उनकी पुत्री नारायणी, और श्रीवास की भतीजी लगी। श्रीवास छोटे हैं, सबसे बड़े श्री नलिन, उनके बाद श्रीवास, उनके बाद श्री राम, उनके बाद श्रीपति, उनके बाद श्री निधि, ऐसे मतलब क्रम से इस प्रकार से 4 भाई हैं, 5 भाई हैं। तो नलिन की कन्या, श्री नलिन की कन्या नारायणी को कुमारहट्ट में जन्म दिया। किन्होंने? श्री नलिन ने। और संसार में ना रहे। उनके छोटे भाई श्रीवास पंडित ने नारायणी और उसकी माता को अपनी देख रेख में नवद्वीप में रखा। तो श्रीवास पंडित के देखभाल में नारायण माता जो है और पुत्री नारायणी उनकी देखभाल में रही। नारायणी की माता का भी कुछ दिन में परलोक गमन हो गया। अब नारायणी अकेली बिना माता पिता की है, तो उनकी देखरेख कौन कर रहे हैं? श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित। तो जब श्री चैतन्य गया धाम से लौटे, तो श्रीवास पंडित आदि अनेक भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते थे और श्रीवास पंडित के आंगन में रात्रि के समय नाम संकीर्तन करते थे। पूरी रात श्रीवास पंडित के आंगन में पूरी रात कीर्तन होता था। तो जो बहिर्मुख लोग थे उनके कान हृदय फटते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, द्वेष में आकर के अनेक प्रकार की बकवादें करते हैं। श्रीवास पंडित सरल प्रकृति के थे। दुष्टों ने अगर कहा कि मुसलमान राजा के पास तुम्हारी रिपोर्ट कर दी गई है, तो उस समय मुसलमानों का शासन था, तो जो हिंदू ही जो ईर्ष्यालु थे, हिंदुओं में ही आपस में ईर्ष्या होती थी, तो ईर्ष्यालु हिंदुओं ने श्रीवास पंडित को बताया कि आपकी शिकायत पहुंच गई है मुसलमान राजा के पास। क्या शिकायत पहुंच गई? कि आपके घर में रात भर कीर्तन होता है और पड़ोसियों को जो है नींद नहीं आती। अतः मुसलमान राजा के सिपाही नौका लेकर तुम्हें और गौरांग को पकड़कर ले जाएंगे। श्रीवास मन में भयभीत हो गए, लेकिन सर्वांतर्यामी महाप्रभु जान गए कि मेरे भक्त को भय हो रहा है। श्री चैतन्य तो भगवान है, तो अंतर्यामी है, तो जान गए श्रीवास पंडित को डर लग रहा है। तो श्रीवास के घर पहुंचे और उन्हें कहा श्रीवास, यदि राजा के सिपाही आएंगे तो सबसे पहले मैं उन सिपाहियों के साथ राजा के पास जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। राजा के सिपाही आएंगे अगर तुम्हें लेने के लिए, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सिपाहियों के साथ राजा के पास, और राजा के समस्त काजी मुल्ला और हाथी घोड़ों को अपने सामने बुलवाऊंगा। मैं राजा के सामने जाऊंगा मैं, हाँ, और राजा के जितने काजी मुल्ला हैं और राजा के जितने हाथी घोड़े हैं उन सबको सामने बुलवाऊंगा। फिर मैं काजी मुल्लाओं से कहूंगा, अपने कुरान आयतें पढ़ करके इन हाथी घोड़ों को प्रेम से रुलाओ। अगर तुम्हारे धर्म में कुछ शक्ति है तो अपने कुरान की आयतें पढ़ करके इन हाथी घोड़ों को प्रेम से रुलाओ और अपने धर्म की महिमा दिखाओ, मैं ये बोलूंगा। तुम जानते हो उनमें ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं ऐसा कर सकते कि हाथी घोड़ों को प्रेम से रुलाएं, ना वो खुद प्रेम से रो सकते हैं। तब मैं राजा के सामने सब काजी मुल्ला और हाथी घोड़ों को भी श्री कृष्ण नाम उच्चारण कराऊंगा और कृष्ण कृष्ण कहलाकर उन्हें रुलाऊंगा और अपने धर्म की महिमा बताकर सत्य असत्य का निर्णय करूंगा राजा के ही सामने। तो श्रीवास श्री चैतन्य की बातें सुन रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक भगवान ने अपनी महिमा दिखाई नहीं थी। तो अब श्रीवास पंडित के मन की बात को जानकर महाप्रभु बोले, श्रीवास यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अभी अपना प्रभाव दिखाता हूँ, मैं अभी यहीं पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर तो हाथी घोड़े हैं नहीं, हाथी घोड़ों को प्रेम से रुलाएं, लेकिन श्रीवास पंडित के घर में तो हाथी घोड़े हैं नहीं, तो क्या है? सामने आंगन में नारायणी खेल रही है, 4 साल की बालिका बच्ची है, केवल 4 वर्ष की अबोध बालिका। महाप्रभु ने उसे अपने निकट बुलाया और कहा, बेटी नारायणी कृष्ण नाम बोलो तो, कृष्ण कहकर रोकर दिखाओ तो। इतना कहती वो नारायणी बालिका हाँ कृष्ण कह कहकर उच्च स्वर में रोने लगी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा ऐसी बही कि पूरा आंगन भीग गया। हरि बोल। देखो ये प्रभाव उन्होंने करके दिखाया है ना, कि हाथी घोड़ों को भी प्रेम से रुला सकते हैं, यहाँ तो हाथी घोड़े हैं ही नहीं। तो भगवान ने कहा, मैं राजा के महल में जाके हाथी घोड़ों को प्रेम से रुलाऊंगा और कृष्ण नाम कहलवाऊंगा। तो 4 साल की बच्ची में भी जो है ठीक से बोल नहीं पाती, 5 साल में ही बच्चा ठीक से बोल पाता है, 4 साल की बच्ची भी और कृष्ण का नाम ऐसे बोल रही है कि वो रो रही है प्रेम में, और कितना रोई, पूरा आंगन भीग गया। और आंगन कितना बड़ा है श्रीवास पंडित का, अभी भी अगर आप जाएं तो श्रीवास पंडित का आंगन अगर भीगाना है तो कम से कम 1000 बाल्टी चाहिए, 1000 बाल्टी पानी से आंगन भीगेगा, इतना मतलब पानी चाहिए, इतना बड़ा आंगन है। और 4 वर्ष की बालिका ने अपने आंसुओं से आंगन भिगो दिया है ना। सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गौर चांग आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलिकांग चारी वसारी रसई उन्मत चरित्र हा कृष्ण बालिया कांधे नाहि संबित अंगवाहे पाणि धारा पृथ्वी रतले परिपूर्ण है स्थल नयन एर जले। इस प्रकार श्री गौरांग ने नारायणी को निमित्त बना करके अपनी ईश्वरता का प्रकाश किया। सबसे पहले अपना भगवत्ता दिखाई भगवान ने, क्या करके नारायणी से कृष्ण प्रेम भुलवा करके और उससे प्रेम में रुला करके भगवान ने सबसे पहले अपना जो महिमा है इस प्रकार से दिखलाई। और वो नारायणी कौन है? वृंदावन दास ठाकुर की माता है, है ना, उसको उसको ही जो है कृष्ण प्रेम दे करके अपनी महिमा दिखाई। इसी प्रकार एक बार फिर महाप्रभु ने नारायण पर कृपा करी, ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात, श्रीवास के घर में जब महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की तो उन्होंने सब भक्तों को आज्ञा दी, एक एक आकर मेरे गले में पुष्पमाला डालो। भगवान ने सब भक्तों को आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी कि एक एक आकर के मेरे गले में क्या पहनाओ, फूल की माला पहनाओ और मेरा प्रसाद ग्रहण करो, मैं जो प्रसाद दूंगा उसको ग्रहण करो। सब भक्तों ने हर्षित होकर प्रभु को मालाएं धारण कराई और उच्च से प्रसाद ग्रहण कर अपने को कृतार्थ माना। सब आए, भगवान से प्रसाद भी लिया। अंत में जितना उच्च से बचा महाप्रभु ने नारायणी को बुलाकर सब का सब उसे दे दिया। 4 साल की बच्ची नारायणी पर इतनी कृपा, जितना बचा उनका जूठन सब नारायणी को दिया। ये देखकर समस्त वैष्णव धन्य है ये बालिका, परम धन्य इसका जीवन, ऐसा कहने लगे और नेत्रों में आंसू भर गए सबके कि इस 4 साल की बालिका का कितना सौभाग्य है कि सबका सब उच्छिष्ट भगवान ने इसी को दिया, 4 साल की बच्ची को। कितना आश्चर्य, जब नारायणी सब प्रसाद पा चुकी तो प्रभु बोले, नारायणी कृष्ण प्रेम आनंद में रो करके तो दिखा, अब खाया है तो कुछ है इसका परिणाम भी निकलना चाहिए। तो प्रेम के आनंद में आंसू बहा, भगवान ने ऐसा कहा उसको। और इतना सुनते वो बालिका नारायणी कृष्ण कृष्ण बोलकर नाचने और रोने लगी। आज तक वैष्णव मंडली में ये ध्वनि गूंजती है, अद्यापि हाँ वैष्णव मंडले जा रे ध्वनि गौरांगे रे अवशेष पात्र नारायणी। क्या अद्यापि हा, अद्यापि का मतलब आज भी वैष्णवों के समाज में, वैष्णव मंडले वैष्णवों के समाज में जा रे ध्वनि, ये ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी, कि गौरांग के अवशेष की पात्र कौन है? नारायणी। जैसे कोई व्यक्ति खाता है और जितना जूठा बचा तो किसी कूड़े दान में डाल देता है जूठा, तो श्री चैतन्य का कूड़ा दान कौन है? नारायणी। जैसे जितना भी जूठा बचा वो नारायणी को दिया, तो अवशेष पात्र कौन है? नारायणी। ऐसी महान भाग्यवती और महाप्रभु की कृपा पात्रा थी नारायणी, जिसके परम सौभाग्यवान पुत्र हैं चैतन्य भागवत के रचयिता व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर। नारायणी देवी परम वंदनीय है, ब्रज लीला में ये अंबिका की बहन किलिंबिका है और नित्य कृष्ण का उच्च से प्रसाद ग्रहण करती है। गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है कि नारायणी कृष्ण लीला में किलिंबिका दासी है, नंद महाराज के भवन की दासी है। कृष्ण लीला में नारायणी जो वृंदावन दास ठाकुर की माता है, कृष्ण लीला में कृष्ण के घर की एक दासी है, नौकरानी है, और कृष्ण का जितना भी जूठा बचता है वही खाती है। तो पिछले जन्म में भी कृष्ण का जूठा खाती रही और इस जन्म में भी वही कृष्ण जब श्री चैतन्य के रूप में आए तो उनका जूठा खाती है। अंबिका या सुसा यासीन नामनी स्त्री लिखिलिंबिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी मता। जब यौवन अवस्था प्राप्त हुई नारायणी को तो श्रीवास पंडित ने नारायणी का विवाह कुमारहट्टवासी एक कुलीन ब्राह्मण वैकुंठ दास के साथ कर दिया। श्री वैकुंठ दास, श्रीवास पंडित ने नारायणी का विवाह किससे किया? श्री वैकुंठ दास से किया। तो वृंदावन दास ठाकुर के पिता कौन है? श्री वैकुंठ दास। कहाँ पर? कुमारहट्ट, कुमारहट्ट में जो रहते हैं श्री वैकुंठ दास, कुमारहट्ट में रहते हैं और नारायणी का विवाह श्रीवास ने उनके साथ किया। और श्रीवास कहाँ रहते हैं? नवद्वीप में। और समय पाकर नारायणी गर्भवती हुई, 4-5 महीने का गर्भ था तो वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। ये इनका जन्म ही नहीं हुआ, वृंदावन दास ठाकुर का जन्म ही नहीं हुआ और पिता वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। पिता चले गए, वैकुंठ चले गए, नारायणी गर्भ अवस्था में ही अनाथिनी या विधवा हो गई। तो नारायणी देवी ने पुत्र को जन्म दिया कुमारहट्ट में। अब बाल्यकाल से वृंदावन दास में असाधारण गुण दिखाई देने लगे। साधारण बालक नहीं है, भाग्यवान बिरवान के होत चीकने पात, कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। मतलब कोई विशेष पेड़ है तो शुरू में ही जो पत्ते होते हैं वो चिकने होते हैं, ये बताया जाता है। उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर बचपन में ही उनके जो लक्षण हैं वो विशेष लक्षण हैं। अनाथिनी नारायणी पुत्र को लेकर ससुराल में विपत्ति में पड़ गई। अब पति का वैकुंठ गमन हो गया तो नारायणी अब अपने पुत्र के साथ ससुराल में है, विपत्ति में पड़ गई, है ना। लोग जो है फिर वो अमंगल मानते हैं विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना या कुछ ना कुछ बोल देना, उल्टा बोल देना। तो वृंदावन दास के साथ में नारायणी ससुराल में विपत्ति में पड़ गई, लेकिन फिर विपत्ति दूर हुई। कैसे? अब सुनिए। नवद्वीप के अंतर्गत गंगा के पश्चिम पार मामगाछी में वासुदेव दत्त ने एक मंदिर स्थापित किया था। वासुदेव दत्त श्री चैतन्य के बड़े भक्त हैं। वे स्वयं कांचना पाड़ा ग्राम में रहते थे। महाप्रभु की नवद्वीप लीला के समय निकटवास करने के लिए उन्होंने मामगाछी में ये मंदिर स्थापित किया था, किंतु बाद में जब श्री चैतन्य संन्यास ग्रहण कर चुके तो नवद्वीप में अब इनका आना जाना नहीं हुआ, कि नवद्वीप में श्री चैतन्य लीलाएं करते थे। तो नवद्वीप में जो रहने वाले भक्त थे अब नवद्वीप छोड़ के चले गए। क्यों? उनको श्री चैतन्य की याद आती थी। श्री चैतन्य नवद्वीप में जब रहे 24 साल तक जो लीलाएं करी उन भक्तों ने लीलाएं देखी, अब भगवान ने संन्यास ले लिया, अब वापस आएंगे नहीं। जिस स्थान में कोई संन्यास लेता है उस स्थान में वापस नहीं आता, तो इन भक्तों को जो है फिर नवद्वीप छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि तो नवद्वीप में श्री चैतन्य की लीलाएं याद आती थी और बहुत उनको विरह महसूस होता था, इसी नवद्वीप छोड़ के चले गए। तो वो जो मंदिर था अब क्या हो गया? वीरान हो गया। तो श्रीवास के साथ परम मित्रता थी वासुदेव दत्त की, उस नाते दुखिया नारायणी देवी को उन्होंने उस मंदिर की सेवा का भार सौंप दिया। नारायणी देवी अपने पुत्र के साथ वृंदावन के वृंदावन दास के साथ कहाँ पर आ गई? मामगाछी में आ गई और उस मंदिर की सेवा में आ गई। और मंदिर की सेवा में अगर आ गई तो फिर क्या हुआ? सौभाग्य। मंदिर में भगवान की सेवा में आ गई नारायणी, तो दुर्भाग्य क्या हो गया? उसका सौभाग्य बन गया। आते हैं आपस में बातें कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सामने बैठ करके बातें कर रहे हैं। कौन कौन बातें कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर? आपसे कह रहा हूँ आपसे, ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ, बातें करने के लिए बैठे आप लोग। ध्यान से सुनिए तो फायदा होगा, नहीं तो बातें करना है तो बाहर जाइए, सामने बैठ करके बातें कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। तो नारायणी विधवा अपने पुत्र के साथ ये दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का सामना कर रही थी, और मंदिर की पूजा मिल गई, मंदिर की सेवा मिल गई, तो दुर्भाग्य क्या बन गया? सौभाग्य, सौभाग्य बन गया। तो नारायणी पुत्र वृंदावन दास के साथ माम गाछी में रहने लगी। आज तक वहाँ की नारायणी सेवा प्रसिद्ध है, भगवान की जो सेवा करती थी तो नारायणी सेवा अभी भी प्रसिद्ध है। भाई नारायणी ने कैसे सेवा की थी भगवान की, आज भी याद किया जाता है नारायणी सेवा, है ना। माम गाछी में विद्या का केंद्र था, अनेक विद्वान पंडित वास करते थे वहाँ। हरिदास ठाकुर ने भी वृंदावनदास ठाकुर ने भी बचपन में विद्या प्राप्त की, संस्कृत विद्या प्राप्त की, थोड़े दिनों में सर्वशास्त्रों के विद्वान हो गए। और श्री चैतन्य देव की उच्छिष्ट पात्र नारायणी देवी के गर्भजात संतान थे। भक्तों का संग मिला, शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप इन्हें संसार से विरक्ति हो गई। इसी बीच माता का भी परलोक गमन हो गया। वृंदावन दास परम विरक्त हो उठे, किंतु उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, इन्होंने संन्यास नहीं लिया, ना तो गृहस्थ बने और ना सन्यासी बने, क्या बने? ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी। तो कोई व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी भी बना रह सकता है, या ब्रह्मचारी के बाद कोई गृहस्थ बनता है या कोई सन्यासी बनता है। तो ब्रह्मचारी के बाद कोई गृहस्थ बनता है और गृहस्थ के बाद फिर सन्यासी बनता है, कोई ब्रह्मचारी के बाद सीधे सन्यासी बनता है, ब्रह्मचारी के बाद कोई गृहस्थ बन सकता है और फिर गृहस्थ के बाद भी सन्यासी बन सकता है, या ब्रह्मचारी के बाद कोई गृहस्थ ना बने सीधा सन्यासी बने, और कोई ब्रह्मचारी के बाद भी ब्रह्मचारी ही रहे, तो ये भी हो सकता है। तो ये वृंदावन दास ठाकुर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे और ब्रह्मचारी ही बने, ना तो इन्होंने संन्यास लिया और ना गृहस्थ बने। उस समय नवदीप में नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान कर रहे थे। श्री चैतन्य तो लीला समाप्त करके चले गए अपने धाम, उसके बाद इनका जन्म हुआ। वृंदावन दास ठाकुर का जो जन्म हुआ तो श्री चैतन्य का तो दर्शन हुआ नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु उस समय प्रेम प्रदान कर रहे थे बंगाल में, और इन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय लिया और नित्यानंद प्रभु ने इन्हें दीक्षा प्रदान की और अमर शिष्य रूप में स्वीकार किया। सबसे अंतिम शिष्य वृंदावन दास ठाकुर सबसे अंतिम शिष्य हैं। और नित्यानंद प्रभु ने इन्हें चैतन्य चरित्र लिखने की आज्ञा दी और शक्ति का भी संचार किया। श्री नित्यानंद प्रभु किसी को अगर आज्ञा दें तो शक्ति भी देंगे, तो वृंदावन दास ठाकुर को आज्ञा दी चैतन्य चरित्र लिखो और शक्ति का भी संचार किया। अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके चैतन्य चरित्र के छोल लिखी थे पुस्तके। नित्यानंद प्रभु ने इनसे कौतुक में कहा, यानी कौतुक माने हंसते हंसते कहा, क्या कहा कि चैतन्य चरित्र कुछ लिखो और पुस्तक बनाओ, एक पुस्तक छापो चैतन्य चरित्र लिखो। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञाकारी शेरे सूत्र मात्र लिखे आमी कृपा अनुसारे। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को सिर में धारण करके मैंने उनकी कृपा के अनुसार कुछ थोड़ी थोड़ी बातें लिखी। ताहर आज्ञा आमी कृपा अनुरूपे किछु मात्र सूत्र आमी लिखी ले पुस्तके। तो उनकी आज्ञा पा करके उनकी कृपा के अनुसार मैंने कुछ सूत्र ही इस पुस्तक में लिखे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं से प्रभु कलि योगे अवधूत राय सूत्र मात्र लिखी आमे तार आज्ञाएं। तो वही नित्यानंद प्रभु कलयुग में कृपा करने वाले हैं और उनकी आज्ञा से मैंने कुछ सूत्र मात्र ही लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी कुछ भी शक्ति नहीं थी, उनकी शक्ति उनकी कृपा से मैंने जो लिखा है वो भी थोड़ा सा लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर अपने को बिल्कुल योग्य नहीं मानते और क्या मानते हैं, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा और उनकी कृपा से ही मैंने कुछ लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर ने गौणताई की अर्चा विग्रहों की प्रतिष्ठा की। इनके अनेक शिष्य हुए, उनमें से श्री रामहरि नामक एक कायस्थ शिष्य था और उसके ऊपर विग्रह सेवा का भार सौंप कर ये वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहाँ पर आ गए? वृंदावन में आ गए और अपने शिष्य रामहरि के ऊपर मंदिर की सेवा का भार सौंपा। इस प्रकार से इनकी एकमात्र रचना है श्री चैतन्य भागवत। वृंदावन दास ठाकुर ने एक ही पुस्तक लिखी है, क्या? श्री चैतन्य भागवत। और इसके द्वारा ही वे सबसे ऊपर हो गए, क्योंकि इतना अद्भुत ग्रंथ है चैतन्य भागवत, इतना अद्भुत ग्रंथ है, इसमें श्री चैतन्य का प्रेम भरा है। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु का प्रेम ही प्रेम भरा है। जो सुनता है उसको क्या मिलता है? श्री चैतन्य का प्रेम मिलता है। तो ये चैतन्य भागवत इतना दिव्य ग्रंथ है और इसको लेकर के ही वृंदावन दास ठाकुर सबसे ऊपर उठ गए, सबसे ऊंचा उनको यश मिल गया। वृंदावन दास ठाकुर 70 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और संपूर्ण जगत को श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य की लीला का अमृत प्रदान कर दिया चैतन्य भागवत के रूप में, और नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। गौड़ी वैष्णव आज भी उनके जो चैतन्य भागवत है उसको पढ़ करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। चैतन्य भागवत को अगर पढ़ लिया, चैतन्य भागवत अगर सुन लिया तो कृतार्थ हो गए। कृतार्थ का मतलब है जो भी अर्थ जीवन का था वो मिल गया। मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ है? भगवत प्राप्ति, प्रेम की, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो वो इससे मिल जाता है तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो चैतन्य भागवत के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर हैं। तो हमने इनके विषय में कुछ बातें पढ़ करके सुनाई हैं। अब इसमें चैतन्य भागवत में कुछ बातें हैं मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें लिखा है कि श्री चैतन्य के भोजन का शेष प्रसाद जो कुछ था वो पुण्यवती नारायणी ने पाया। श्री नारायणी श्रीवास के भाई की पुत्री थी, 4 वर्ष की अज्ञान बालिका थी, उसको प्रभु ने अपना भोजन शेष प्रदान किया। वो परम आनंद से प्रभु का प्रसाद पाने लगी। भोजने अवशेष जते के आचिल नारायणी पुण्यवती तहां से पाइल। भोजनेर अवशेष जते के आचिल, आचिल माने था, जते माने जो भी, भोजनेर अवशेष जते के आचिल नारायणी पुण्यवती तहां से पाइन। तो वही पाया नारायणी पुण्यवती ने, वही पाया जो भोजन का अवशेष था। किनके भोजन का अवशेष था? श्री चैतन्य के। श्रीवासेर भ्रातृश्रोता बालिका अज्ञान, श्रीवासेर, श्रीवासेर मतलब श्रीवास की भ्रातृश्रोता यानी भाई की पुत्री, श्री नलिन की पुत्री है। श्रीवासेर भ्रातृश्रोता बालिका अज्ञान, 4 वर्ष की बालिका है, अबोध बालिका है। श्रीवासेर भ्रातृश्रोता बालिका अज्ञान तहारे भोजन शेष प्रभु करे दान। उसी को अपना भोजन का शेष श्री चैतन्य दान करते हैं, उसी को दान देते हैं अपने भोजन का शेष। तहारे भोजन शेष प्रभु करे दान। क्या? श्रीवासेर भ्रातृश्रोता बालिका अज्ञान तारे भोजन शेष प्रभु करे दान। परम आनंद खाए प्रभु रे प्रसाद। तो भगवान का प्रसाद परम आनंद में खाए, वो खाती है परम आनंद में। परम आनंद खाए प्रभु रे प्रसाद सकल वैष्णव तारे करे आशीर्वाद। तो भगवान का प्रसाद परम आनंद में खाती है तो सब वैष्णव उसको आशीर्वाद देते हैं। धन्य धन ए इसे, धन्य धन ए इसे सेवीला नारायण बालिका स्वभाव धन्य ए हारे जीवन। सब वैष्णव क्या बोलते हैं? धन्य धन ए इसे सेवीला नारायण, इस बालिका, ये बालिका धन्य है, धन्य है, इसी ने नारायण की सेवा की है, तभी तो श्री चैतन्य का जूठन पाती है। तो धन्य धन्य ए इसे सेवीला नारायण, सेवीला माने सेवा किया, किसकी? नारायण की। धन धन ए से सेवीला नारायण, बालिका स्वभाव है धन ए आर है जीवन। बालिका का स्वभाव है लेकिन जीवन तो धन्य हो गया। खाई रे प्रभु रे आज्ञा हाय नारायणी, खाई ले प्रभु रे आज्ञा हाय नारायणी। अब जब उसने खा लिया तो प्रभु की आज्ञा हुई कि हे नारायणी, जब उसने खा लिया तो प्रभु की आज्ञा हुई हे नारायणी। खाई ले प्रभु रे आज्ञा हाय नारायणी, कृष्ण रे परमानंद कांदे देखी सुनी। तो कृष्ण के परम आनंद में तू क्रंदन कर, हम देखेंगे और सुनेंगे तेरे क्रंदन को, हम देखेंगे और सुनेंगे। तू कृष्ण के माँ परम आनंद में क्रंदन तो करो। जब प्रसाद पा लिया, श्री चैतन्य का उच्छिष्ट प्रसाद पा लिया, तो श्री चैतन्य ने आज्ञा दी उसको कि नारायणी अब तू कृष्ण के परम आनंद में क्रंदन कर और हम देखेंगे और सुनेंगे। कृष्ण रे परमानंद कांदे देखी सुनी, हे न प्रभु चैतन्य रे आज्ञा रे प्रभाव। तो इस प्रकार से चैतन्य की आज्ञा के प्रभाव से, आज्ञा का प्रभाव, उसकी कुछ भी शक्ति नहीं है, आज्ञा के प्रभाव से हे न प्रभु चैतन्य रे आज्ञा रे प्रभाव, कृष्ण बालिका कांदे अति बालिका स्वभाव। तो बालिका स्वभाव से बालिका, लेकिन कृष्ण के कृष्ण कृष्ण बोल करके क्रंदन करने लगे। आश्चर्य अध्यापि यहाँ वैष्णव मंडाले जा रहे ध्वनि, गौरांगे रे आवशेष पात्र नारायणी। तो आज भी वैष्णवों के समाज में ये ध्वनि होती है। क्या ध्वनि निकलती है? कि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी, कि गौरांग के अवशेष की पात्र कौन है? नारायणी है। श्री चैतन्य जो है जहाँ अपना जूठन डालते थे वो बर्तन कौन है? नारायणी। और उसी के जो है पेट से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, जहाँ भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद चाहता था, है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ चर्चा की है वृंदावन दास ठाकुर के बारे में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? थोड़ा समय हमारे पास है तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो जब श्रीवास पंडित बहुत चिंतित हो गए, श्रीवास पंडित बहुत चिंतित हो गए, क्यों चिंतित हो गए? श्रीवास पंडित को बहुत चिंता हो गई। क्या चिंता हुई थी? हाँ, मुसलमान राजा के सिपाही आएंगे और श्रीवास पंडित को और उनके सब कीर्तन करने वालों को पकड़ करके ले जाएंगे। तो श्री चैतन्य मनुष्य की लीला कर रहे थे, ये अब उनको लगा कि अब मुझे अपना ईश्वरता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भक्त को भय हो, अपने भक्त को निर्भय करने के लिए। तो भगवान श्री चैतन्य ने कहा, श्री चैतन्य ने कहा, क्या कहा? कि सुना है तुमको ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है,